यूपी उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं। वे इसका ठीकरा भाजपा के प्रदेश इकाई, राज्य इकाई और केंद्र इकाई पर भी फोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा के कार्यकर्ता गुस्सा तो 3 दिन पहले ही हो गए थे जब नरेश अग्रवाल को पार्टी में शामिल किया गया। नरेश अग्रवाल ये वही शख्स हैं जिन्होंने सदन में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। कथित रूप से उन पर यह आरोप लगे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, उन्होंने गोरक्षकों को गुंडा तक कहा, यह आरोप निकलकर सामने आए। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वह जो लोग हैं, वह यह लिख रहे हैं कि नरेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन की जिस वजह से एक अपशगुन हुआ और भाजपा उपचुनाव हार गई। क्या लगता है आपको?
देखिए, आप शगुन शगुन जैसी चीज़ें पर मैं कुछ बहस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जिस तरह से नरेश अग्रवाल को पार्टी में ज्वाइन किया गया तो इसको लेकर नाराज़गी बहुत ज़्यादा जो कार्यकर्ता होती हैं उनमें थी, क्योंकि नरेश अग्रवाल कभी भी उनका चेहरा ऐसा रहा ही नहीं है। वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी, RSS, इन सब लोगों को हमेशा से वो आड़े हाथों लिया करते हैं। उनके बयान इतने विवादित हो गए थे, उन्होंने देवी देवताओं तक को नहीं छोड़ा था। तो ऐसे नेता को, ऐसे लीडर को जिसने कई साल समाजवादी पार्टी में गुजारे, जिसने हर मुद्दे पर, हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, ऐसे अगर किसी शख्स को आप पार्टी में लेते हो, बड़ी लीडरशिप तो नहीं, चलो वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर एक नेगेटिव जो मैसेज है वो जाता है। और मुझे लगता है कि नरेश अग्रवाल को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल किया तो इसका जो एक मैसेज था वो गलत तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर गया। कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि हम तो बरसों से पार्टी को एकजुट करने में, पार्टी को बढ़ाने में हम जी जान लगा दे रहे हैं, और ऐसे में कोई बाहर का कोई नेता आता है उसे आप पार्टी में ले लेते हो और बड़े धूमधाम के साथ पार्टी में लेते हो। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत इंसान को गलत समय में अपनी पार्टी में ले लिया, और यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उसमें जो फैसले आए वो, लोगों की जो नाराज़गी है वो, और जो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता इस पर नाराज़गी जता रहे हैं, वो खुद ये बता रहे हैं कि आपका डिसीजन गलत था।
एक दौर में नरेश अग्रवाल भाजपा के कार्यकर्ताओं को भरा बुला कहते थे, कहते हैं कि ये सड़क पर गुंडाई दिखाते हैं जी, अब उनसे कैसे नजरें मिलाएंगे?
देखिए,
ये अब सपोर्ट तो उन्हीं का लेना पड़ेगा ना।
देखिए, यही तो बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, हम वो करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन करप्शन मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत स्ट्रैटेजी क्या है? क्या कांग्रेस के लोगों को आपने पार्टी में ले लेना, ये कांग्रेस मुक्त भारत होगी? या फिर करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में ले लेना और फिर उन पर नॉन करप्ट का टैग लगा देना, क्या ये स्ट्रैटेजी है? मतलब समझ में नहीं आता है कभी कभी कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है। वो जो जो चीज़ें बोल रहे हैं उन्हें सही तरीके से वो उन्हें इंस्टॉल करेंगे या फिर मैनिपुलेट किया जाएगा जो उनकी बातें हैं उनको? तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता के अलावा जो समर्थक हैं उनके अंदर ये जा रहा है ये मैसेज, और इसी के चलते कहीं ना कहीं एक नाराज़गी ज़रूर है। आपको अगर कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो क्या आप कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके आप कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि आप नेता तो वही है ना, बस कलर चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है।
विचारधारा कैसे बदलोगे?
विचारधारा नहीं बदल सकते, इसके अलावा शख्स को नहीं बदल सकते। जिसने 50 साल अगर कांग्रेस में काम किया है, 20 साल कांग्रेस में काम किया है, 10 साल सपा में काम किया है, 10 साल बहुजन समाज पार्टी में, शिवसेना में ये सब किया, काम किया है, उनको आप अपनी पार्टी में ले रहे हो और ये कह रहे हो कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरासर लोगों के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। दरअसल चेहरे का सिर्फ कलर बदल रहा है, चेहरे के जो बाकी के हिस्से हैं बॉडी के वो उसी तरह के हैं, उसी तरह के करप्ट हिस्से हैं, उसी तरह के जो क्या कहते हैं एक सांप्रदायिक हिस्से हैं, उसी तरह के जो गलत हिस्से हैं वो सब वहीं पर है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बहुत लोग अच्छे भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या कर रही है वो सोचना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में मोदी लहर के बीच समाजवादी पार्टी की आंधी ने बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। फूलपुर से लेकर गोरखपुर तक का जो गढ़ है उसे समाजवादी पार्टी ने ढहा दिया और अपने प्रत्याशियों को और उनके माथे पर विजय तिलक लगाया। समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है उपचुनाव में काफ़ी अच्छा रहा। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से आए हैं जी। क्या लगता है आपको अब समाजवादी पार्टी से जुड़ी उनको किस तरह से हराया जाए, क्या वो स्ट्रेटजी कुछ बता सकते हैं, किस तरह से काम किया जाए, लोगों को जानते हैं, क्या लगता है आपको?
देखिए अब जो भी स्ट्रेटजी अगर नरेश अग्रवाल बताते हैं वो काम नहीं आएगी। देखिए नरेश अग्रवाल की अगर बात करें तो नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के किन किन लोकल नेता हैं, उन्हें किन किन डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, उन्हें किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेंगे ये भले भारतीय जनता पार्टी को बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने खुद को गलत रास्ते में उसी वक्त डाल दिया था। देखिए कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है और कुछ चीज़ें आप करवाते हो। जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेश अग्रवाल को अपने पार्टी में ले लिया, इससे ऑटोमेटिकली लोगों में ये मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो अपने पर्सनल फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली लोगों के पास गया और यही कारण है कि जितने भी विपक्ष थे, छोटे छोटे जो विपक्ष है, छोटी छोटी पार्टियाँ जो होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं, वो सब एक साथ हुए, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया और इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हमें देखने मिली है।
चलिए तो आपको हम बता रहे थे नरेश अग्रवाल के बारे में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि नरेश अग्रवाल के पैर पड़े और जिस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल ये तो सिर्फ एक मिथ्या है, सिर्फ एक बहाना हो सकता है। लेकिन हम आपको नरेश अग्रवाल के बारे में बता दें तो नरेश अग्रवाल पिता एससी अग्रवाल जो कि कांग्रेस में थे, उनकी राजनीतिक विरासत उन्हें प्राप्त हुई है। हरदोई से कई बार विधानसभा पहुंच चुके हैं और अपने समाज में बहुत ज़्यादा वो प्रभुत्व रखते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में नरेश अग्रवाल कितने फायदेमंद हो सकते हैं। बरेली HW न्यूज़ के साथ नमस्कार।